नमस्कार, 4 सितंबर 2017 चाय पे खबर शुरू हो गई है। द क्विंट पे आपके साथ मैं हूं अनंत। और अभी यहां आने से पहले नहाने के पानी के तापमान से पता चल गया था कि मौसम में फेरबदल हो गई है। वैसे फेरबदल बहुत सारी जगहों पे हुई है, हमारे कैबिनेट में भी हुई है। कल ही रविवार को मोदी कैबिनेट में फेरबदल के तौर पे 9 नए चेहरों की एंट्री हुई है और वहीं 4 मंत्रियों का प्रमोशन हो गया है। वजह ये अभी नहीं मालूम मुझे। कई मंत्री तो ऐसे हैं जिनके मंत्रालय बदल दिए जा चुके हैं, सेकंड चांस भी दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फेरबदल हुए हैं उसमें निर्मला सीतारमण जी का नाम है, उनको रक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी के बाद वो दूसरी महिला है जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। इंदिरा गांधी जी ने भी एक बार संभाली थी लेकिन वो एडिशनल चार्ज था। अच्छा, इसके अलावा पीयूष गोयल को रेल मंत्री बना दिया गया है। पुराने रेल मंत्री के बारे में तो आप जानते हैं, सुरेश प्रभु जी, उन्होंने रेल दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा देना चाहा था। तब मोदी जी ने उन्हें कहा था कि अभी रुको, अब वो रुकने का टाइम खत्म हो गया है। प्रभु जी का अब तबादला हो गया और अब उन्हें वाणिज्य मंत्री बना दिया है। अब रूलिंग पार्टी कुछ भी करे, ऑपोजिशन ने कुछ तो कहना ही है। कांग्रेस ने इसी मंत्रिमंडल के नेताओं की उम्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट सीनियर सिटीजन क्लब बन गई है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में हुए फेरबदल को अधिकतम सरकार और शून्य शासन का करार दिया है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए, छानबीन की जाए, तो ये पाया गया है कि कांग्रेस के ज्यादातर कामयाब नेता भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में ही आते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का वहां भी कोई अता पता नहीं है। खैर, जनता को मंत्री के काम और कान से मतलब है, बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं। अच्छा, जैसे ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी चीन की ओर, चाइना की ओर रवाना हो गए। अरे पिछले हफ्ते आपको बताया तो था पीएम मोदी 9वीं ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां जाने वाले हैं। ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये चीन के जियामेन नाम के एक शहर में रविवार को शुरू हो गया और वहां पहुंचते ही पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। अब ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ प्रवासी भारतीयों से मिलकर आ जाएंगे, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। डोकलम विवाद खत्म होने के बाद दोनों नेता पहली बार आपस में मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। वैसे चीन के राष्ट्रपति भी आजकल काफी व्यस्त हैं। हर 2-4 दिन में उत्तर कोरिया की कोई ना कोई हरकत होती है, उसके लिए चीन को सुननी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल छोड़ दिया था और अभी कल रविवार को परमाणु बम की टेस्टिंग कर दी, सुनना चीन को पड़ा। ये बॉम्ब की टेस्टिंग कल हुई। उत्तर कोरिया ने रविवार को सुबह सुबह कह दिया कि अपने छठे परमाणु परीक्षण में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया है। इसकी वजह से आए भूकंप के झटके को आधार बनाया जाए तो अब तक का ये सबसे शक्तिशाली धमाका साबित हो रहा है। उत्तर कोरिया के प्लान के हिसाब से अब परमाणु मिसाइल क्षमता हासिल करने की दिशा में ये एक अहम कदम है और अगर उनकी माने तो वो अब अमेरिका में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। हालांकि चीन ने उत्तर कोरिया के इस परमाणु परीक्षण की निंदा की है, लेकिन उत्तर कोरिया को तो आप जानते हैं, काफी दिनों से उनकी इनकमिंग बंद है, जो मन में आता है वही करते हैं, सिर्फ आउटगोइंग ही चल रही है। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया के जो लीडर हैं, ऊपर वाला उनको सुबुद्धि दे, अच्छा हेयरड्रेसर दे। अच्छा, चलिए अब स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। अब आपको मैं फिर वही घिसी पिटी बात बताऊंगा, आप बोलेंगे यार कुछ नया बताओ, क्या करूं, क्रिकेट की दुनिया में चली वही रहा है। भारत ने श्रीलंका को क्रिकेट में एक बार फिर से हराया, बुरी तरह से हराया। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 5वें वनडे में भी शानदार खेल दिखाया और 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर वनडे सीरीज में मेजबानों का सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे अगर मैच के डिटेल्स में आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो बता दूं, टीम इंडिया को जीत के लिए 239 रन का लक्ष्य मिला था और कप्तान विराट कोहली ने जिम्मेदारी उठाई, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए करियर का 30वां शतक ठोक दिया, हथौड़ी की जगह बल्ला इस्तेमाल किया। कोहली ने 110 रन की नाबाद पारी खेली, केदार जाधव ने 63 रन बनाए और साथ ही भुवनेश्वर कुमार वो गेंद फेंकने में 5 विकेट झटक गए। मुबारक हो टीम इंडिया। अच्छा देखिए, आज हमने चीन की बात की, उत्तर कोरिया की बातें की, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के उस इलाके में सिर्फ टेंशन, सम्मेलन, हथियार की टेस्टिंग यही सब होती रहती है। चलिए आपको उसी इलाके के देश जापान की इश्क की कहानी सुनाता हूँ। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इश्क किसी भी देश में हो आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ जापान में भी देखने को मिला है। जापान की राजकुमारी माको ने रविवार को एक आम शख्स से अपनी सगाई की घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि वो आम शख्स मैं नहीं हूँ। वैसे आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताता हूँ। जापान के राजवंश में पुरुष दबदबे का चलन है। उसके मुताबिक राजकुमारी माको को इस सगाई की कीमत अपना शाही दर्जा खोकर अदा करनी पड़ेगी। वाह, राजकुमारी माको ने ठीक ही सोचा होगा कि बिना प्यार मोहब्बत के शाही दर्जे का आचार डालेंगी। वैसे जापान की ये बड़ी अजीब परंपरा है, अगर शाही खानदान की कोई लड़की किसी आम लड़के से शादी करती है तो वो अपना शाही दर्जा खो देती है, लेकिन ये कानून शाही पुरुषों पर लागू नहीं होता, वो चाहे किसी से भी इश्क मोहब्बत कर लें, शादी कर लें। ताज्जुब वाली बात है, एक देश जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, पूरी दुनिया में आगे है, उसमें आज भी ऐसे विचार फल फूल रहे हैं। राजकुमारी माको को दोनों हाथों से सलाम और उनके लिए ये गाना पेश खिदमत है अनंत की तरफ से द क्विंट पे।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना।
वाह, मुगले आजम का गाना और वो भी जापान की राजकुमारी पे फिट बैठा। चलिए आज के लिए चाय पे खबर पे बस इतना ही, आपसे मिलूंगा मैं कल सुबह यहीं द क्विंट पे। मेरे यानी अनंत की तरफ से बाय बाय।